ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो जैसे आप सभी ने आज का टॉपिक तो सुना कि रहम दिल कैसे बने। बाबा भी चाहता है कि हम बाबा के बच्चे मर्सीफुल बन जावे, क्योंकि ये जो रहम मर्सी बहुत ही ब्यूटीफुल क्वालिटी है। दुनिया के सारे धर्मों में आप देखेंगे तो इस गुण को बहुत महत्व दिया गया है। हम लोग विदेशों में रहते अनेक प्रकार के धर्मों के लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तो देखा गया है कि इस गुण की महिमा विदेशों में भी अपरंपार है। खास करके आपने देखा होगा कि इस्लाम धर्म में जो यहूदी लोग हैं, सूफी लोग हैं, वे लोग भी दो शब्दों का प्रयोग अपने धर्म में करते हैं, रहमान और रहीम, जिसका मतलब होता है दया, करुणा या मर्सी। फिर आपने देखा होगा बुद्धिज्म, जैनिज्म में भी इस गुण को बहुत महत्व दिया गया है, कंपैशन के रूप में, करुणा के रूप में। मुझे याद है कि मैं 3 साल पहले चाइना में थी, बीजिंग जो उसका कैपिटल है, तो वहां पर हम लोग रिट्रीट कर रहे थे। तो एक दिन हमारा खाली था, तो वहां के हमारे चाइनीज भाई बहने, उन लोगों की दिल थी कि मैं उनके शहर में जाकर उनका मंदिर देखूं, चाइनीज टेंपल। तो फिर मेरे को प्यार से लेके गए तो मैं चली गई। पता है किसका मंदिर था? वो मंदिर था गॉडेस ऑफ मर्सी, रहम की देवी का मंदिर था। शक्लें तो खैर उनके जैसी ही थी, हमारे देवी देवताओं जैसी शक्ल नहीं थी, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म में आप देखो वो लोग भी उतना ही इंपोर्टेंस देते हैं कि ये रहम की देवी है, जिसके पास जाकर के वो रहम की भीख मांगते हैं। फिर क्रिश्चियनिटी में आप देखो तो क्रिश्चियन धर्म में भी कहते हैं कि गॉड इज अ मर्सीफुल, ही इज अ ओशन ऑफ मर्सी, वो रहम का सागर है। क्रिश्चियन पीपल भी भगवान के आगे जाके क्या कहते हैं? हैव मर्सी ऑन मी गॉड, हमारे पर रहम दृष्टि करो। फिर अपने हिंदू धर्म में तो हम सबको पता है कि जब भी देवी देवताओं के सामने जाते हैं तो क्या कहते हैं? कृपा दृष्टि रखो, दया दृष्टि रखो। तो ये रहम, कृपा, दया, उसको बहुत हम लोग तो याद करते हैं। तो दुनिया के सारे धर्मों में आप देखो इस रहम को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। और बाबा भी चाहता है कि उसके बच्चे भी रहम दिल बन जावे। बाबा तो है ही रहम दिल, वो चाहता है हम बाबा के बच्चे भी रहम दिल बने। तो रहम की डेफिनेशन क्या हो सकती है? रहम किसको कहते हैं? तो बाबा कहते हैं कि रहम दिल बनना अर्थात अपने अंदर कल्याण की भावना रखना। जो हो गया अच्छा था, जो हो रहा है बहुत अच्छा है, और जो होने वाला है बहुत बहुत अच्छा है, ऐसी कल्याण की भावना। क्योंकि समय कल्याणकारी है, बाबा शिवा मींस कल्याणकारी, इसका मतलब ही है कल्याणकारी। तो इस संगम युग में कुछ भी गलत नहीं हो सकता, ऐसा हमारा परम विश्वास इस ड्रामा में, वर्तमान समय में। तब हम अपने जीवन में फायदा ही फायदा अनुभव करते जाएंगे। बाबा ने लास्ट वीक की मुरली में, याद करो, हमको बहुत अच्छी बात बताई थी। बाबा ने कहा था, बच्चे तीन डॉट्स को अप्लाई करो तो क्या होगा, माया नॉट आएगी नहीं, माया अलाउ नहीं करेगी। तो मैं आज आपको पांच डॉट्स बताती हूं। बाबा इज अ डॉट, आत्मा इज अ डॉट, ड्रामा ये भी डॉट है ना, या फिर मेडिटेशन में बैठते हैं तो कहां जाते हैं, परम धाम की सफर करते हैं ना मन के द्वारा। तो परम धाम को क्या कहेंगे, वर्ल्ड ऑफ डॉट्स, बिंदुओं की दुनिया है ना। तो वहां तो बिंदु बनेंगे तभी तो जा पाएंगे, उस दुनिया का अनुभव कर सकेंगे। और पांचवा डॉट है जो बाबा कहते हैं कि 63 जन्म में हम लोगों ने बहुत सारे हिसाब किताब बनाए, अब संगम युग में क्या करना है, सारे हिसाब किताब को सेटल कर जीरो बना देना है, यानी सब चुकतू करना है। तो ये पांच डॉट अगर मुझे याद रहा तो माया नॉट अलाउ, फिर माया नहीं आ सकती, तब हम सही अर्थ में कल्याणकारी बन सकते हैं। तो रहम दिल बनना अर्थात कल्याणकारी बनना, रहम दिल बनना अर्थात सबके प्रति हमारी स्नेह की भावना हो, प्यार की भावना हो। वो एक धागे का देखो क्या करता है, कपड़े की सिलाई करके उसको नजदीक ले आता है, सी देता है। तो हमें भी इसी प्यार के धागे को संगम युग में अपने साथ रखना है, ताकि हम सब आपस में नजदीक आ जाएंगे। बाबा आया ही है प्यार की दुनिया स्थापन करने के लिए। और हमारी दुनिया में तो कहते हैं ना, शेर बकरी भी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो विचार करो कि एनिमल्स में इतना प्यार, तो देवी देवताओं में तो कितना प्यार होगा, या तो वो प्यार की शक्ति अभी मुझे धारण करनी होगी। तो रहम दिल बनना माना ऐसी प्यार की शक्ति का जीवन में अनुभव करना। रहम दिल बनना अर्थात उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना। बाबा कहते ना, उमंग उत्साह हमारे जीवन का श्वास है, प्राण है। उमंग उत्साह हमारी विंग्स, पांखे हैं। अगर मेरे पास वो विंग्स होगी तभी तो हम उड़ पाएंगे, है? बिना पांखे कैसे उड़ेंगे। तो हमें अपने जीवन में भी वो उमंग उत्साह का अनुभव करना है, साथ ही साथ दूसरों को भी उमंग उत्साह का अनुभव कराते रहना है। तभी तो हमारा एक गीत बना हुआ है ना, उड़ते रहो उड़ाते रहो। तो ऐसे उमंग उत्साह में सबको उड़ाते रहना है। फिर बाबा कहते रहम दिल बनना अर्थात स्वीकार करने की भावना जीवन में धारण करना, फीलिंग ऑफ एक्सेप्टिंग एवरीथिंग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। कई बार हमें अपने जीवन में बहुत अपेक्षाएं होती है, हम चाहते हैं सामने वाला भी मेरे जैसा पुरुषार्थ करे, फलाना भी ऐसा बन जावे वैसा बन जावे, बट इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति अपना पुरुषार्थ करता है अपनी कैपेसिटी के अनुसार। तो तो मुझे इस बात को समझकर हरेक का स्वीकार करना है। देखो हम भी बाबा के पास आए थे तो हमारे में भी कितनी कमियां कमजोरियां थी ना। बाबा ने क्या किया, कितना प्यार से हमें स्वीकार कर लिया, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मेरे बच्चे ये छोड़े फलाना छोड़े तो ही मैं स्वीकार करता हूं। नहीं, क्या बोला बाबा ने, बच्चे जैसे हो वैसे हो लेकिन तुम मेरे हो। स्वीकार किया ना। तो हमें भी किसी की बुराई या अवगुण देख करके हमें कोई अधिकार नहीं है उसके पर क्रोध करने का या उसका तिरस्कार करने का। हमें भी एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करने की भावना को अंदर में पनपने देना है। जैसे समुद्र क्या करता है, देखो समुद्र में कितनी सारी नदियां आती है, या कभी कभी नदियां अपने साथ अच्छी चीजें ले आती है, कभी कभी गंदी चीजें भी ले आती है। समुद्र क्या करता है, अगर अच्छी चीजें हैं तो अपने में समा लेता है, अगर बुरी चीजें हैं तो बड़े बड़े वेव्स के द्वारा उसको किनारे फेंक देता है। तो यही प्रोसेस हमें भी करना है। वैरायटी प्रकार के लोग हमारे सामने आएंगे, या अगर मुझे अच्छी बातें सुना रहे हैं हम उसको एक्सेप्ट कर ले। अगर वो मेरे काम की बात नहीं है तो एक कान से सुनकर तुरंत दूसरे कान से रवाना कर देना है, अंदर में नहीं रखना है। इसको कहते हैं स्वीकार करने की भावना, रहम दिल बनना, अर्थात आत्मिक अभिमानी बनना, आत्म अभिमानी बनना, भाई भाई की दृष्टि वाली भावना। दुनिया में कोई भी धर्म का व्यक्ति क्यों न हो, कोई भी देश का व्यक्ति क्यों न हो, कोई भी कलर का व्यक्ति क्यों न हो, परंतु आत्मा के नाते वो व्यक्ति मेरा भाई है। हम सब एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, सारा विश्व मेरा परिवार है। या तो ये भावना चवंदर में जागृत होगी तब जाकर के आत्मा के जो सात गुण है ना, सुख शांति प्रेम पवित्रता शक्ति आनंद और ज्ञान, इन सातों ही गुणों का आत्मा अनुभव करती रहेगी। और जो भी हमारे सामने आएंगे हम उनको अनुभव कराते जाएंगे। रहम दिल बनना अर्थात अपनेपन की भावना जगाना है। मुझे याद है कि हमने दादी जानकी के साथ, दादी प्रकाशमणि के साथ बोट टूर किया विदेशों का है, तो अलग अलग धर्म के लोग इन लोगों को मिलते थे। या दादी जानकी तो हमेशा उन लोगों को कहती थी कि आई एम योर फ्रेंड है, तू मेरी सखी है, मैं तेरी सखी हूं, ऐसे करके या उनको अपना बना लेते थे ये लोग। हम लोगों को तो मेहनत करनी पड़ती थी अपना बनाने की, लेकिन दादियों में ये विशेषता हम लोग देखते थे। एक सेकंड में वो लोग अपनेपन का अनुभव करते थे और फिर क्या होता था, उनको ये अनुभव होता था कि हम राइट जगह पर अपने परिवार में वापस लौट आए हैं। तो ये है अपनेपन की फीलिंग्स का अनुभव कराना अर्थात मर्सीफुल बनना। रहम दिल बनना अर्थात सहयोग की भावना जागृत करना। हमारा एक स्लोगन भी तो बना हुआ है ना कि सहयोग देना है सहयोग लेना है। या मुझे सबको कोऑपरेट करना है, चाहे कोई करे ना करे, लेकिन मुझे सहयोग बाबा के कार्य में देते ही रहना है। अगर मेरा कर्म अच्छा होगा तो डेफिनेटली उसका फल मेरे को अच्छा ही मिलना है। या तो संयोग के लिए फिर देखना पड़ता है कि कई बार कईयों की हमें थोड़ी नेगेटिविटी दिखाई देती है, तो वो नेगेटिविटी देखते हैं तो थोड़ा संयोग करने का मन कमती हो जाता है। तो उसके लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना होगा? सब की अच्छाइयों को देखे। चलो एक व्यक्ति में 100 नेगेटिव गुणों अवगुण होंगे, लेकिन एक गुण जरूर होगा। या तो उनकी अच्छाइयों पर अगर मेरी दृष्टि रहती है और उन अच्छाइयों को मैं अप्रिशिएट करती हूं, तो फिर हम सहयोग सभी के साथ दे सकेंगे, फिर कोई समस्या उसमें उत्पन्न नहीं हो सकती। नहीं, हमारे हाथ में भी तो देखो 5 अंगुलियां है, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज की है ना, तो ये 5 ही अंगुलियां मिलकर के काम करती है तो हम काम अच्छी तरह से कर पाते हैं ना। एक अंगुली कोई काम नहीं कर सकती। एक बार क्या हुआ था, ये 5 अंगुली में एक बहुत बड़ा डिबेट हो गया। हर अंगुली कहती थी कि मैं सबसे बड़ी हूं, और उसके लिए सबके पास कोई ना कोई रीजन भी था। तो ये पहली अंगुली कहती थी कि मैं सबसे बड़ी हूं। क्यों? क्योंकि भक्ति में आप देखो, जब हम कहते हैं कि भाई भगवान को याद करो जो ऊपर में रहता है, या तो यही अंगुली है जो भगवान की ओर इशारा करती है, ना ऊपर वाले को याद करो, तो हमेशा यही अंगुली उठती है। तो इस अंगुली को बड़ा नशा था कि मैं सबको भगवान की याद दिलाती हूं, इसीलिए मैं नंबर 1 हूं। फिर ये दूसरी अंगुली आई, कहती है मैं सबसे बड़ी हूं। ये 5 अंगुली में ये वाली तो वैसे भी लंबी होती है ना, तो कहते आई एम ऑलरेडी बिग वन, या मैं ऑलरेडी बड़ी हूं। फिर ये तीसरी अंगुली वो कहती है कि मैं बड़ी हूं। कैसे? तो आप सबको पता है कि इसको कहते हैं रिंग फिंगर, है अंगूठी इसी अंगुली में पहनी जाती है। और भक्ति में जब हम लोग पूजा पाठ वगैरह करते थे तो यही अंगुली थी जिससे हम सबको तिलक लगाते थे, देवी देवताओं को भी तिलक लगाते थे। तो ये वाली अंगुली को बड़ा नशा था कि मैं पूजा के काम में आती हूं, इसीलिए सबसे बड़ी हूं। फिर ये लास्ट वाली अंगुली आई, कहती है मैं सबसे बड़ी हूं। क्यों? क्योंकि भागवत में एक उदाहरण लिखा हुआ है जो आप सबको पता ही है। या एक बार इंद्र जी नाराज हो गए, बहुत सारा पानी हो गया, बाढ़ आ गई, सारे गोप गोपी उनकी गायें वगैरह पानी में डूबने की कगार पर आ गए। तब सब लोग श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं और श्री कृष्ण को क्या कहते हैं, हमारी रक्षा करो। तब कृष्ण ने क्या कहा कि आप सबको मुझे सहयोग देना पड़ेगा, ये अपनी लास्ट अंगुली है उसका सहयोग दो जिससे हम सब मिलकर के गोवर्धन पर्वत को उठा लेंगे और उसके नीचे सबकी रक्षा हो जाएगी। तो ये छोटी वाली अंगुली को ये नशा था कि मैंने लॉर्ड कृष्णा को मदद की है, इसीलिए मैं सबसे बड़ी हूं। या फिर ये अंगूठा आया, कहता है नहीं नहीं मैं सबसे बड़ा हूं। आपको पता होगा पहले के जमाने में, आजकल भी कई जगह पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको वो सिग्नेचर करना भी नहीं आता है, तो सिग्नेचर के नाम पर अंगूठा लगा देते हैं। या तो ये अंगूठे को बड़ा नशा था कि मैं तो बड़े बड़े लीगल डॉक्यूमेंट साइन करता हूँ, इसीलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। तो अब देखो 5 अंगुलियों का अपना अपना कारण था। एक जज बैठा हुआ था, उसको डिसाइड करना था कि कौन सबसे बड़ा, और जज बड़ा इंटेलिजेंट था। उसने क्या किया कि टेबल पर एक बहुत सुंदर फलों से भरा हुआ एक बाउल रख दिया, कटोरा रख दिया, या फिर एक एक अंगुली को बोला तुम जाकर के इस बाउल को उठाओ। या सबने ट्राई करके देखा, वो उसको हिला भी नहीं पाए। या फिर जज ने कहा कि ओके अब सब मिल करके उठाओ। या तो सब ने मिल करके आसानी से कटोरा उठा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। या हर एक में कोई न कोई विशेषताएं जरूर होती है, तो उन विशेषताओं की ओर अगर मेरी दृष्टि जाती है और उसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं, तो फिर हम सहयोग इजीली कर सकेंगे। तो रहम दिल बनना माना ऐसी सहयोग की भावना को अंदर में जगाना है। एक बार बाबा ने कहा था कि रहम दिल बनना अर्थात चार बातों का अपने जीवन में चेक करना है। पहली बात बाबा ने बताई थी कि चेक करना है कि मेरे में किसी प्रकार की आलस्य या अलबेलापन तो नहीं है, लेजीनेस, केयरलेसनेस। ब्राह्मणों में होती है कोई प्रकार का अलबेलापन, होता है ब्राह्मणों में? है, ब्राह्मणों में तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा आ भी जाता है। है, कौन सा अलबेलापन आता है ब्राह्मणों में? है, तो ब्राह्मणों में सबसे पहले अलबेलापन आता है अमृत बेले उठने का। या बाबा को रात को सो के हम सोने समय बाबा को बता देते हैं कि बाबा 3:30 बजे मेरे को उठा देना या 4:45 बजे उठा देना, तो बाबा उस समय से पहले आके हमें उठा देगा। है, खटिया को हिला देगा, हमें भी हिला देता है, अनुभव करते हैं ना, हम उठ भी जाते हैं। फिर क्या होता है, जैसे बाबा चले जाते हैं, फिर वो आंटी माया आती है, है? माया मासी आती है, फिर क्या करती है, उसकी मुरली शुरू हो जाती है। बाबा की मुरली तो 6:30-7 बजे चलती है ना, माया की मुरली 4 बजे से शुरू हो जाती है। फिर माया कहती है कि सो जा मेरे लाल, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, है? सो जा, आज तेरे को हेडेक हो रहा है, है? कहती है सो जा, आज तेरा बहुत बिजी दिन है। अब वो भी तो हमारी 63 जन्म की मासी रही है ना, तो कभी कभी हम लोग भी उसकी मुरली सुन लेते हैं, या फिर उठते नहीं है। फिर बाद में कैसा अंदर में फील होता है, गिल्टी कॉन्शियस लगता है ना, अंदर में अच्छा फील नहीं होता है कि आज मैंने अमृत वेला मिस कर दिया, मेरे को मिस नहीं करना चाहिए था। तो इसीलिए हमें अमृत वेला के लिए बहुत अलर्ट एक्यूरेट बन करके वो करनी है, तो अमृत वेले का हम फायदा ले सकेंगे। उसमें थोड़ा भी आलस्य या अलबेलापन आया तो हमारा वैल्यूएबल टाइम मिस हो जाएगा, क्योंकि वही तो टाइम है भोलानाथ अपने सारे भंडारे खोल के बैठता है। या और उस टाइम अगर मैंने बाबा से नहीं लिया तो अब हम कब ले पाएंगे। तो इसीलिए मुझे अमृत वेला के पर बहुत बहुत ध्यान देना है। दूसरी बात, कभी कभी ब्राह्मणों में नींद का अलबेलापन आ जाता है। खैर अभी भी थोड़ा रिस्की टाइम तो है ब्रेकफास्ट के बाद, लेकिन उसके ऊपर भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि नींद में क्या होता है, जितनी हम करेंगे उतनी कम है, बैलेंस नींद हमारी होनी चाहिए, टू मच भी नहीं होनी चाहिए, कमती भी नहीं होनी चाहिए। उसमें बैलेंस होगा तो फिर हम फायदा ले सकेंगे। एक मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। हमारे पास एक भाई आता था, पुराना भाई था, बहुत समय से वो ज्ञान में था। तो उसका ये नियम था कि अमृत वेला मिस नहीं करना है, तो जैसे ही वो सेंटर पर आता था, अमृत वेले पहुंच जाता था, एकदम सामने सामने ही बैठता था। सामने बैठ करके जैसे ही वो बैठे तुरंत सो जावे, वो चला जाता था ट्रांस में। अब पीछे वाले सब दिखाई देता था ना सबको, अभी झुटके मारो तो दिखाई देगा ना, लेकिन कोई भाई बहनों में हिम्मत नहीं थी कि उस व्यक्ति को जा करके बोले कि भाई तुम क्यों झुटके मारते हो, कोई में हिम्मत नहीं थी। फिर एक दिन सबने मिल करके मेरे को कहा कि बहन जी आपको ट्राई करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा वो था ना जोश वाला वो भाई था। तो मैंने कहा ठीक है मैं ट्राई कर सकती हूँ या। तो फिर एक दिन मैं उनके साथ बैठी और बैठ करके मैंने उसकी बहुत महिमा की। मैंने कहा भाई जी आप बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो, है इतना जल्दी जल्दी 3 बजे उठकर ना धोकर 4 बजे बाबा के घर में पहुंच जाते हो, इतना अच्छा मेडिटेशन कर रहे हो, थोड़ी महिमा की। फिर महिमा करने के बाद उसको थोड़ा सा मैंने पूछा प्यार से कि भाई जी आप जब मेडिटेशन में बैठते हो तो आपको क्या कोई थोड़ी तकलीफ है, ये थोड़ा गला हिलता रहता है। तो मेरे को कहता है कि आप क्या समझते हो मैं झुटके मारता हूँ। मैंने कहा ना भाई मैं नहीं कहती हूँ झुटके मारते हो, खाली आपका थोड़ा ये गले में कोई तकलीफ तो नहीं है। तो फिर वो भाई मेरे को कहता है कि बहन जी क्या बात है कि मैं बाबा के साथ बहुत सारी बातें करता हूँ, क्योंकि वही तो टाइम है चिटचैट करने का। अब देखो दुनिया में भी कोई हमारे से बात करता है, हम कान तो हिलाते हैं ना, यस यस फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो कहता है मैं वो बाबा को रेस्पोंड कर रहा हूँ या इसीलिए मेरा गला हिलता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कभी कभी इधर भी हिल जाता है गला। तो ऐसा क्यों होता है? तो फिर वो कहता है कि बेन जी मैं बाबा के साथ इतनी बातें करता हूँ, कभी कभी हमारा डिसएग्रीमेंट भी हो जाता है। तो मैं बाबा को कहता हूँ ना बाबा ऐसे नहीं है। तो ऐसे हो जाता है या। देखो बाबा हमारा चतुर सुजान, उसके बच्चे भी कोई कम थोड़े हैं या। तो बाबा कहते हमें थोड़ा ध्यान रखना है, इधर उधर किधर भी नहीं जाना चाहिए, एकदम स्ट्रेट बाबा को ही हम देखें या। तो आत्मा में वो ताकत आएगी, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी वीकनेसेस होती है ना, हम ध्यान भी नहीं लेते हैं, ऐसे ऐसे बहाने बना लेते हैं, बातें बना लेते हैं, तो फिर वो हमारे जीवन में चेंज नहीं आता है। देखो दुनिया वालों को सोने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक भाई मैं किसी देश में थी तो मेरे से मिलने आया, तो मेरे को कहता है कि बहन जी पिछले 6 महीने हो गए मैंने साउंड स्लीप नहीं किया है, गहरी नींद में सोया नहीं हूं, आप बताओ आपका मेडिटेशन करने से क्या मैं सो पाऊंगा। मैंने कहा या तो जो मेडिटेशन करता है उसको सोने का प्रॉब्लम ही नहीं होता है। नहीं ब्राह्मण आप देखो दुनिया वाले वो दंडलोप के गधेले में नहीं सो पाते हैं, और हम बाबा के भोले भाले बच्चे बैठे बैठे भी सो जाते हैं। नहीं कभी थके पके होते हैं, मुरली में आके बैठ जाते हैं ना, फिर एकदम ट्रांस में चले जाते हैं, फिर याद प्यार आता है तो नीचे उतर आते हैं। मैंने उस भाई को समझाया कि आप मेडिटेशन करो, जरूर फायदा होगा। तो फिर उसने आया, कोर्स किया। कोर्स करने के बाद फिर उसने छठवें दिन मेरे को फोन किया, कहते हैं कि आज पिछले 6 महीने में आज का मेरा दिन था, मैंने अच्छी तरह से नींद की। या तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि नींद में भी हमें केयरलेस नहीं बनना है। चलो शरीर को जितनी चाहिए डेफिनेटली उतनी नींद देवे है, लेकिन टू मच में नहीं जाना है। या उसमें कभी कभी थोड़े अलबेले बन जाते हैं हम लोग, या फिर बाबा कहते भोजन में कभी कभी अलबेले बन जाते हैं। है? भोजन में अलबेले बन जाते हैं तो क्या करते हैं, कभी कभी ओवर ईटिंग करते हैं। नहीं मतलब अपनी फेवरेट कोई चीज बनती है ना, तो फिर थोड़ा ठूस ठूस के खा लेते हैं। फिर खाने के बाद क्या होता है? है, हम सब अनुभवी है ना, फिर नींद आएगी ना, तो कभी कभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कभी कभी हंगरलेस ईटिंग कर लेते हैं कि चलो 12 बज गया, खा लो, अभी भूख है या नहीं है तो खा लेंगे। या कभी कभी चलो वो क्या होता है, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, तो जल्दी जल्दी खाने में भी ठीक नहीं है ना, बाबा की याद में धीरे धीरे अगर हम खाते हैं तो वो मैसेजेस ब्रेन को मिलता है कि भाई अब इनफ है, इससे ज्यादा नहीं खाना है। या जल्दी जल्दी खाने में हम ज्यादा कैलोरीज खा लेंगे। या तो ये सब बातों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ब्राह्मण देखो सब कुछ छोड़ करके बाबा के पास आए है ना। या बस एक ही तो चीज है खाने की, जहां पर भी हम लोग जाते हैं सब खातरी तो करते हैं ना, और तो कुछ हमें चाहिए ही नहीं। लेकिन उसमें भी बाबा कहते थोड़ा सा अटेंशन रखना जरूरी है, तभी तो कहते ब्राह्मण सारी दुनिया को कॉन्कर कर सकते हैं, खाली ये 3 इंच की जो जीव है ना उसको जीतने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा भोजन में भी हमें अटेंशन रखना है तो अलबेले नहीं बनेंगे। या फिर बाबा कहते कभी कभी कोई कर्म हम कर लेते हैं ना, तो कर्म करने में भी अलबेले नहीं बनना है। कभी कोई चीज इधर रख दी उधर रख दी, तो दादी जानकी हम लोगों को हमेशा सिखाती थी, सेंटरों पर भी आती थी, तो दादी देखती थी सब जगह जाकर के सब चीजें राइट जगह पर एक्यूरेटली रखी हुई है या नहीं है। भोग भी लगाओ तो दादी कहती थी एक्यूरेट वे से भोग लगाओ, जैसे मधुबन में लगता है, है? कहां पर भी थोड़ा ठीक नहीं होगा दादी भोग नहीं लगाती थी। खाना भी बनाओ, जल भी बनाओ बाबा का, सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए। और यही हम लोगों को बार बार सिखाती थी कि एम रखो जीवन में कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, नंबर 1 ब्रह्मा कुमारी, काम चलाओ कुछ भी काम नहीं करना है। या तो ये एक्यूरेसी जितनी जितनी हमारे कर्मों में आएगी तो उतना उतना हम अलर्ट एक्टिव बन जाएंगे। या फिर ये थोड़ी छोटी मोटी जो अलबेलापन की चीजें है वो निकलती जाएगी। दूसरी बात बाबा ने बताई थी कि ब्राह्मणों में कभी कभी थोड़ी सी जेलसी आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है। ईर्ष्या क्यों आती है? इमेजिन करो कि एक बाबा का बच्चा है, बहुत टैलेंटेड होशियार है, दूसरा बच्चा है उतनी विशेषताएं नहीं है उसमें, तो ये वाला इससे कंपेयर करेगा है? कि देखो बाबा ने इसमें तो कितनी बातें भरी है, मेरे में तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं मेरे को भगवान ने क्यों चुना होगा। या तो ऐसे डाउट्स, कंपैरिजन, कंपटीशन करने से वो ईर्ष्या की भावना जागृत होती है, तो उसके लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना होगा? तो बाबा ने कहा उसके लिए हमें संतुष्ट बन करके रहना पड़ेगा इस ब्राह्मण जीवन में। तभी तो बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत अच्छा टाइटल दिया है ना कि तुम मेरे बच्चे संतुष्ट मणियां हो। संतुष्ट मणि किसको बाबा कहते हैं? जो अपने आप से भी खुश रहता है, अपने आप से कैसे खुश रहेंगे? स्वमान में जितना जितना रहेंगे है, तो कभी हम अपसेट नहीं हो सकते। ज्ञान का जितना जितना मनन चिंतन होगा ना, कभी अपसेट नहीं हो सकते। तो स्वमान का नशा हमको अपने आप से संतुष्ट रखेगा। दूसरों से भी संतुष्ट रहना है, है? चलो अपने आप को तो कैसे भी करके संभाल लो, लेकिन दूसरों को कैसे संभाले? क्योंकि हम कुछ भी करते हैं ना, दूसरे हमारा दोष निकालते रहते हैं, तो दूसरों को कैसे खुश करें? तो बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई थी, है? तो बाबा कहते, देखो दूसरों को हमारे से कुछ भी नहीं चाहिए, एक बात वो एक्सपेक्ट करते हैं हमारे से, अगर वो मेरे से बड़े हैं, तो मुझे उनको रिगार्ड रेस्पेक्ट देने का रिकॉर्ड ठीक रखना है, अगर मेरे से वो छोटे हैं, तो उनको प्यार देते जाओ। ये दो गुण के कारण दूसरे हमारे से खुश रहेंगे। और तीसरा एरिया है, बाबा से भी खुश रहना है, है? बाबा के लिए भी हमारे दिल में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती है, है? हम चाहते हैं बाबा भी बहुत कुछ मेरे लिए कर देवे, लेकिन बाबा तो करता ही है, लेकिन वो जो कहता है वो मैं भी तो करूं ना। बोथ वे ट्रैफिक होनी चाहिए, वन वे नहीं होना चाहिए, या? और बाबा तो है ही हमारा भोला नाथ, जल्दी खुश हो जाता है। देखो भक्ति में भी 33 करोड़ देवी देवताओं में शिव बाबा को कहते हैं भोला नाथ, जल्दी प्रसन्न हो जाने वाला। मैं आपको एक छोटा सा एक अपने जीवन का एक उदाहरण बताती हूँ कि एक बार मैं पनामा में थी, साउथ अमेरिका में, तो कोई सेंटर पर, बाबा का अपना सेंटर था, तो वहां पर मैं टूर कर रही थी, तो वो सेंटर से इन्होंने एक मंदिर में प्रोग्राम रखा था, तो मैं प्रोग्राम के लिए चली गई। प्रोग्राम पूरा हुआ उसके बाद एक इंडियन युगल मेरे से मिलने आए, इन्होंने बोला कि बहन जी हमने इस देश में बहुत सुंदर मकान बनाया है और हम चाहते हैं कि आप हमारे घर आकर के थोड़ा घूम जावे। भक्ति में तो कहते हैं ना, कोई योगी आत्माएं होती है ना, उनको बुलाते हैं अपने घरों में ताकि बैड वाइब्स निकल जावे, अच्छे वाइब्रेशंस घर में आ जावे। तो इन्होंने बड़े प्यार से मुझे इनवाइट किया, तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगी आपके घर। फिर दूसरे दिन वो लोग मुझे सेंटर से पिकअप किया, या? फिर मैं उनके वहां गई, तो बहुत सुंदर मकान था, समुन्दर का किनारा था, पहाड़ी पर बहुत अच्छी जगह पे अच्छा घर बना हुआ था। तो मेरे को सारे के सारे कमरे में वो ले गए, सब जगह घुमाया, और लास्ट में मुझे एक कमरे में लेके आए, तो ये वाला जो कमरा था वो उनका पूजा का रूम था, या? और पूजा के रूम में मैं ऐसे देख रही थी, सब प्रकार के देवी देवताओं की कुछ मूर्तियां थी, तो कुछ समझो फोटोज थे, 33 करोड़ तो नहीं होंगे बट क्वाइट क्लोज, बहुत सारे बैठे थे वहां पे। तो मैं बड़े ध्यान से सबको देख रही थी, या? फिर वो भाई आया, मेरे को कहता है कि बहन जी इतने सारे भगवान में से आप कौन से भगवान को याद करती हो? तो मैंने देखा, पता नहीं मेरे मुख से कुछ शब्द निकल गए कि अरे यहाँ तो बच्चे ही बच्चे हैं, बाप तो है ही नहीं, ऐसे कुछ शब्द निकल गए। तो ये भाई ने सुना है, फिर वो मेरे को कहने लगा कि बहन जी इसका क्या मतलब है, बच्चे ही बच्चे हैं, बाप कौन है? तो मैंने कहा कि परमात्मा शिव वो सब मनुष्य आत्माएं देव आत्माओं के भी बाप परम पिता है, उसका तो कोई फोटो या कुछ है नहीं यादगार आपके मंदिर में? तो कहता है कि बहन जी है। तो मैंने कहा किधर है, मेरे को तो दिखाई नहीं देता है। तो फिर कहता है कि वो शिवलिंग है लेकिन वो घर के बाहर बैठे हैं। में वो घर में गालीचा वगैरह होता है ना, तो घर में शिवलिंग नहीं रखेंगे, नहीं तो वो दूध पानी कैसे चढ़ेगा। या तो कहता है वो घर के बाहर बैठे हैं। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ऐसे ही बाबा से बातें की। मैंने कहा बाबा देखो आप ज्ञान मार्ग में तो कितने भोले हो, हम अनुभव कर ही रहे हैं, परंतु भक्ति में भी आप कितने भोले हो, है? अपने बच्चों को फर्स्ट क्लास कमरे में बिठाया है और आप घर के बाहर जाके बैठे हो। या तो फिर उसी रात को एक दूसरे मंदिर में कहां प्रोग्राम था, तो मैंने मेक श्योर किया कि ये जो कपल है वो उस प्रोग्राम में आवे, अटेंड करे, क्योंकि उस प्रोग्राम में मुझे बताना था कि गॉड कौन है, हु इज गॉड। या तो फिर ये लोग आए उस प्रोग्राम में। या आने के बाद फिर इन लोगों ने रियलाइज किया कि अरे परमात्मा शिव हाईएस्ट ऑन हाई, उसको हमने घर के बाहर ही बिठाया है। या तो फिर अंदर में दोनों को कुछ होने लगा। फिर क्या किया, चुपचाप शिवलिंग को उठाकर बाहर से अंदर में ले आए। या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग को उनको वो दूध चढ़ाने का था तो कंफ्यूज्ड हो गए, अब कैसे दूध पानी चढ़े शिवलिंग पर। फिर मेरे को फोन किया सेंटर में, फिर कहता है कि बेन जी आपकी बातों को सुन करके हम परमात्मा पिता शिव जो सबसे ऊंचे हैं उनको बाहर से अंदर तो ले आए, लेकिन अब दूध पानी कैसे चढ़े। तो फिर मैंने उसको समझाया कि देखो भाई जी आपने बहुत दूध पानी चढ़ाया, लंबे समय से चढ़ाया, और आपकी इस ऑफरिंग से परमात्मा शिव आपके पर बहुत बहुत प्रसन्न हो गए हैं, और इन्होंने मुझे भेजा है आपको गुड न्यूज देने के लिए कि अभी वो आए हैं आपके पर ज्ञान की लोटी चढ़ाने। या तो क्यों नहीं उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। या तो फिर मैं उस देश में रही थी, उसी सेंटर पर 4 दिन और थी। फिर इस युगल ने वहां आना शुरू किया, कोर्स किया। या कोर्स करने के बाद रियलाइज किया या कि परमात्मा शिव वो तो बहुत बड़े से बड़ा है, तो इन्होंने वो जो पूजा वाला कमरा था ना धीरे धीरे उसको बना दिया अपना मेडिटेशन रूम। है पहले बाबा बाहर था, फिर बाबा अंदर आया, देवी देवता अंदर थे। वो धीरे धीरे जो जिसके भगत थे वो उन्होंने दे दिया। या तो ये बात है कि बाबा हमारा कितना भोला नाथ है, वो तो जल्दी प्रसन्न हो जाता है, परंतु एक बात अपने बच्चों में बाबा एक्सपेक्ट करता है। कौन सी बात है? तो बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे जैसे बन जावे, ऑनेस्ट बन जावे। तो जितनी जितनी हमारे में ऑनेस्टी होगी, सच्चाई, सफाई, ट्रांसपेरेंसी, जो अंदर सो बाहर, डबल व्यक्तित्व नहीं, जो हमारे में कहते ना मुख में राम बगल में छुरी वाला व्यक्तित्व नहीं, जो अंदर सो बाहर, ऐसा व्यक्तित्व होता है तो हमारा भोला नाथ बाबा भी हमारे से संतुष्ट रहता है। या तो ऐसी संतुष्टता जीवन में धारण की तो जेलसी का कोई नाम निशान नहीं रहेगा। तीसरी बात बाबा ने बताई थी कि रहम दिल बनने के लिए हमें मन मत पर मत से दूर रहना है। एक बार बोला था 3 पर को काटना है, पर मत, पर दर्शन, पर चिंतन। 3 पर को काटो, 1 पर को धारण करो, पर उपकार, परोपकार। या तो ये मुझे बार बार चेक करते रहना है कि कहां पर भी थोड़े भी गॉसिप के संस्कार नहीं होने चाहिए। गॉसिप माना इधर की बात उधर करो, उधर की बात इधर करो, वो कौन करता था भक्ति में, याद है ना? हाँ, तो ऐसा नहीं बनना है हमें है? नारद क्या करता था? नारायण नारायण नारायण, और फिर अंदर से फिर लड़वाता था सबको। तो कई बार बाबा के बच्चे भी बाबा 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 करते रहते हैं। अगर फिर थोड़ी भी ये गॉसिप के संस्कार होते हैं ना, तो फिर वो संस्कार हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। कहते ना, आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। इसीलिए बाबा कहते नारद नहीं बनना है तो क्या बनना है? हनुमान बनना है। हनुमान की तीन विशेषताएं थी, एक तो हनुमान बाल ब्रह्मचारी था, पवित्रता की उसमें वो ताकत थी। दूसरा हनुमान डबल लाइट था, मेंटली भी हल्का रहता था या आत्मा भी लाइट, इसलिए हनुमान को सदा उड़ता हुआ दिखाते हैं या वो हमारी यादगार है, है कि जो बच्चे मेंटली हल्के होते हैं स्पिरिचुअली हल्के हैं वो बाबा के साथ उड़ते रहेंगे। और तीसरी हनुमान की विशेषता थी कि उसके रग रग में राम समाए हुए थे, है? दिल भी चीर करके बता दिया कि अगर इस दिल में भी राम नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। या तो ऐसा हनुमान जैसा बंदा है जो सचमुच में पुरुषार्थी था। हनुमान किसकी यादगार है? हमारे ब्रह्मा बाबा की यादगार है। या तो संगम में हम बाप समान बने हैं ना, तभी तो भक्ति में ये यादगार हमारी चली आई है। और चौथी बात बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि रहम दिल बनने के लिए मुझे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है कि हम अपनी अच्छाइयों से इम्प्रेस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। कई बार किसी दूसरे में कोई अच्छी बात देखे ना, उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो ये जो इम्प्रेस होने के संस्कार है ना, तो वहां फिर बाबा नहीं रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप कुकिंग में बहुत अच्छे हैं, खाना अच्छा बना लेते हैं, टोली अच्छा बना लेते हैं, अब दुनिया वाले देखते हैं या तो महिमा तो करेंगे ना कि भई आप तो बहुत अच्छे कुक हो, बहुत बढ़िया बना लेते हो। तो कई बार वो जो प्रशंसा सुनते सुनते हम अपने आप को याद दिला देते हैं कि सारे लोग तो मेरी महिमा कर रहे हैं, तो आई एम लाइक दैट। या फिर वो थोड़ा सूक्ष्म में अहंकार आ जाता है। या कभी दूसरों की अच्छाइयां देखी तो उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। तो इस माया जाल से छूटने के लिए बाबा कहते हमें स्वमान में रहना है। और कई बार आपने देखा होगा कि स्वमान भी कईयों में इतना होता है, सेल्फ एरोगेंस लगता है, अहंकार की फीलिंग्स आती है। तो स्वमान हमारा नम्रता के साथ होना चाहिए, तो कोई को अहंकार की फीलिंग्स नहीं आवे। या तो नम्रता के साथ स्वमान में रहना है, तो इससे फिर ये इम्प्रेस होने की माया जाल से हम छूट जाएंगे। तो ये चार बातें अव्यक्त बाबा ने याद दिलाई थी। रहम दिल बनने के लिए आलस अलबेलेपन को छोड़ना होगा, ईर्ष्या को छोड़ना होगा, मन मत पर मत को छोड़ना होगा, और चौथी बात किसी से भी इम्प्रेस नहीं होना है, न खुद से न औरों से, तब जा करके हम रहम दिल बन सकते हैं। अब सवाल उत्पन्न होता है किसके पर रहम करना है? रहम दिल तो बनना है, किसके पर मुझे रहम करना है? तो पहली बात बाबा बताते हैं कि जो बाबा के बच्चे यज्ञ की ग्लानी कर रहे हैं, हमारी भी ग्लानी कर रहे हैं, उन आत्माओं के ऊपर भी हमें रहम दिल बनना है, है? क्योंकि कई बार कोई हमारी ग्लानी करता है तो फिर मन नहीं करता है उससे कुछ कांटेक्ट में रहने का, लेकिन ऐसे नहीं है। बाबा कहते हमें रहम दिल बन करके उन आत्माओं के लिए भी अच्छे वाइब्रेशंस भेजते रहना है, और हमारे ही अच्छे वाइब्रेशंस एक दिन उनको वापस बाबा के घर ले आएगा, क्योंकि कहते ना ज्ञान का बीज अविनाशी है, उसका विनाश कभी नहीं होता है। सुबह का भूला शाम को घर लौट आवे उसको भूला नहीं कहते हैं। या तो हमें अपनी ओर से अपने दरवाजे बंद नहीं करने हैं, हमें अपने दरवाजे दिल के दरवाजे खुले रखने हैं, ताकि जब भी वो आत्मा रेडी हो तब वो वापस बाबा के पास आ सके। दूसरी बात, कई आत्माएं ऐसी है जो मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, इमोशनली वीक है, कमजोर है, बीमार है। ऐसी आत्माओं के पर भी हमें रहम करना है। वो एक बार बताते हैं कि एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति एडमिट हुआ था, तो ये जो व्यक्ति था बहुत सफर कर रहा था, अंदर ही अंदर कुछ बातों को पकड़ करके वो बैठा हुआ था। वो नर्सिस वगैरह बहुत ट्राई कर रहे थे ये अंदर की बातों को लेट गो करे, छोड़े, लेकिन ये छोड़ नहीं रहा था। तो एक दिन नर्सिस ने सोचा कि चलो हम कोई प्रीस्ट को बुला लेते हैं, तो प्रीस्ट इसको हेल्प करेगा, तो इसके मदद से वो आराम से अपने शरीर को छोड़ पाएगा। तो प्रीस्ट आया, जैसे ही वो अंदर एंटर हुआ उसको देख करके इस व्यक्ति ने उसके पर बहुत गुस्सा किया, उसको बोला यू गेट आउट, उसको चले जाने के लिए कहा। तो प्रीस्ट बेचारा शांति से चला गया, फिर एक दो घंटा बैठा, फिर सोचा कि अब उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ होगा, फिर वो अंदर आया, या फिर भी उसने वही गुस्सा किया, फिर वो चला गया, या फिर वो दूसरे दिन आया, तब जाकर के वो थोड़ा शांत हुआ था, या तब फिर वो उसके बाजू में बैठा, उसके पास बैठ करके उसको पूछा कि तुम्हारे को लगता है कुछ तकलीफ है, कोई चीज अंदर में तुम्हें पकड़ करके बैठी है। तब ये व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मेरे जीवन की एक घटना है, उसको मैं भूल नहीं पा रहा हूं। तो पूछा ऐसी कौन सी घटना है जो आप भूल नहीं पा रहा है, क्योंकि कई हमारे जीवन की बातें होती है ना, हम लोग अंदर में पकड़ के रख लेते हैं, उसको फॉरगेट नहीं करते हैं, क्योंकि फॉरगिव नहीं किया है, माफ नहीं किया है, तो वो भूलती नहीं है। तो फिर उस व्यक्ति ने अपना दिल खोल करके इसको बताया, प्रीस्ट को बताया कि मेरे जीवन में कुछ साल पहले की बात है कि मैं रेलवे में नौकरी करता था, जॉब थी मेरी, और मेरा काम था वो सिग्नल देने का, ग्रीन सिग्नल, हरा सिग्नल, ताकि ट्रेन खड़ी रहे, रुक जावे या चले। तो एक दिन मैंने गलती कर दी, रॉन्ग सिग्नल दे दिया और ट्रेन चल पड़ी। देना था खड़ी रखने का सिग्नल, लेकिन ग्रीन सिग्नल गलती से दे दिया, ट्रेन चल पड़ी। और वहीं पर वो फाटक आता था, वो गेट दरवाजा था ना, जहां पर वो बसें वगैरह जाती है ना, वो बंद कर देते ना फाटक, तो वो आ रही थी, तो वहां पर एक कार थी, तो वही कार से वो ट्रेन ने टक्कर मारी, और उसी कार में उसकी माँ थी और उसका अपना भाई था। कहते दोनों मर गए ना, तो कहते बस वही सीन को मैं माफ नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसके लिए अपने आप को जिम्मेवार समझता हूं, तो यही चीज मेरे को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। फिर प्रीस्ट ने बोला कौन से साल में ये घटना घटी, तुम्हारी माँ का नाम क्या था, तुम्हारे भाई का नाम क्या था। या तब से धीरे से उसने इस व्यक्ति को कहा कि उस घटना में केवल तुम्हारी माँ मरी थी, तुम्हारा भाई जिंदा रह गया था, बच गया था, और वो भाई मैं हूं। या फिर उसने कहा कि चलो आज मैं तुमको मेरी ओर से और अपनी माँ की ओर से जो भी हुआ उसके लिए मैं माफ कर रहा हूं। या तब जाकर के उसका दिल हल्का हो गया। तब जाकर के इसने बड़ी शांति से अपने प्राण त्यागे। या तो ये बात है कि अब समय ऐसा आ रहा है, तो ऐसे टाइम पर हम सबको यही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। या लोगों को मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली कोई ना कोई रूप से हम उसके काम में आवे, या और उनकी आत्मा की सदगति के लिए हम जो भी कर सके ऐसे उनको मदद कर सकते हैं। या तीसरी बात है कि रहम करना है हमें परवश आत्माओं के लिए। कई आत्माएं आप देखो परवश है, पजेस्ड है, एक एक शरीर में कितने कितने ड्राइवर्स बैठे हैं। एक कार को चार चार ड्राइवर चलाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो आज कई ऐसी आत्माएं हैं, एक शरीर में कितनी आत्माएं अंदर बैठी हुई हैं, परवश आत्माएं हैं। अब वो आत्माएं तो अपने लिए कुछ कर नहीं पाएगी, तो मेरे को उन आत्माओं को मदद देनी पड़ेगी। कैसे हम मदद करेंगे, तो सकाश की शक्ति के द्वारा उन आत्माओं को हमें शक्ति देनी पड़ेगी, क्योंकि परवश आत्माओं का मन बुद्धि का कंट्रोल उस आत्मा ने करके रखा है, तो वो तो सोच ही नहीं सकते। या तो हमें उन आत्माओं को मदद करनी पड़ेगी, तो उसके लिए पहले मुझे अपनी स्थिति मजबूत बनानी पड़ेगी, तब जाकर के इन परवश आत्माओं के ऊपर हम रहम कर सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि जो बाबा के बच्चे ज्ञान को छोड़ करके चले गए हैं, उन आत्माओं के पर भी रहम करना है। कभी कभी उन आत्माओं को भी हम फोन कर लिया करें, कभी बाबा के घर की टोली भेज दिया करें, या कभी कुछ ऐसे उनके कांटेक्ट में हम रहे, तो इससे भी क्या होगा, समय आएगा तो वो आत्माएं वापस बाबा के पास आ जाएगी। या फिर बाबा कहते कई निराश आत्माएं हैं, उन निराश आत्माओं को भी हमें मदद करनी पड़ेगी। उनके अंदर भी आशाओं के दीपक जगाने होंगे, क्योंकि देखा ना आप लोगों ने ये वायरस ने कितना डैमेज कर दिया है सारे वर्ल्ड की। आप देखो इकोनॉमी इज डाउन, या पॉलिटिकल हलचल सब जगह कुछ न कुछ प्रकार की है, है? सब जगह आप देखो ये प्रकृति के पांच तत्व, कोई न कोई तत्व फुल फोर्स में काम कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में लोग क्या होता है, होप छोड़ देते हैं, निराशावादी बन जाते हैं। तो मेरा क्या काम है, उनके अंदर आशाओं के दीपक जगाना है, है? ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं के अंदर कुछ ऐसे एनकरेजिंग शब्दों के द्वारा उन्हें हमें आगे बढ़ाने का काम करना है। एक बार वो होप उनके अंदर जग गई तो अपने आप सुख शांति का वो अनुभव करेंगे। वो एक बताते ना, एक बार क्या हुआ था कि चार मोमबत्तियां जल रही थी, या अचानक एक छोटे से बच्चे ने उस कमरे में प्रवेश किया, तीन बत्तियां बुझ गई, एक बत्ती जल रही थी। है? ये जो बत्ती थी वो आशा की बत्ती थी, उसका नाम था होप। जो तीन बुझ गई वो थी सुख शांति और प्रेम की बत्ती। या तो छोटे बच्चे ने बुझी हुई मोमबत्ती को देख करके वो अपसेट नहीं हुआ, उसने क्या किया, वो जल रही थी उस कैंडल के द्वारा और तीन कैंडल जला दी। या तो यही बात बाबा कहते हैं कि आशा के दीपक जगने चाहिए। अगर वो मेरे दीपक जगे हुए हैं तो अपने जीवन में सुख शांति और प्रेम अपने आप आता जाएगा। तो ऐसी ऐसी आत्माओं के लिए हमें रहम करना पड़ेगा। या तो ये रहम दिल बनने की बात जो बाबा हम बच्चों को बताते हैं, तो पहले मुझे खुद के पर रहम करना है, या फिर हम औरों के पर रहम करके बाबा की तरह हम सही अर्थ में मर्सीफुल बन सकते हैं। ओम।